नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं हूं किशन और आइए सुनते हैं झारखंड में खाद्य सब्सिडी के लिए डीबीटी योजना पर लोगों के बयान। अक्टूबर 2017 में झारखंड सरकार ने रांची जिले के नगरी प्रखंड की जन वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का प्रयोग शुरू किया। डीबीटी प्रणाली के तहत कार्ड धारियों को पहले अपने खाद्य सब्सिडी नगद के रूप में बैंक से लेनी पड़ती है और फिर राशन दुकान से 32 रुपए प्रति किलो की दर से चावल खरीदना पड़ता है। पहले वे सीधा राशन दुकान से 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल खरीद पाते थे। जनवरी 2018 के अंत में छात्र वॉलंटियर ने नगरी प्रखंड के 13 रेडमली चुने गांव में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पता चला कि डीबीटी प्रणाली से कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कई लोगों को तो उनका राशन भी नहीं मिल रहा है। औसतन उत्तरदाताओं को पिछले 4 महीनों में डीबीटी की 4 किस्तों में से केवल 2 किस्त ही मिल पाई है। लाभुकों को प्रज्ञा केंद्र के द्वारा बताया जाता था कि उनकी डीबीटी की राशि उनके एयरटेल वॉलेट में हस्तांतरित हुई है। जब ये पैसा निकालने गए तो उन्हें बताया गया कि सरकार ने योजना बंद कर दी है और उन्हें उनका पैसा मिलने का कोई उपाय नहीं है। अब ऐसे लाभुकों को पता है ही नहीं कि उनका पैसा अभी भी उनके डिजिटल वॉलेट में है भी या नहीं। वे अपना पैसा लगाकर राशन खरीद रहे थे। इन सब में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, खासकर बुजुर्गों को एवं दिव्यांगजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सर्वेक्षण के 97% उत्तरदाता डीबीटी प्रणाली के विरोध में है।
मैं मधु आज बताऊंगी दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी समुदाय के विषय में। तमाम तरह के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं से वंचित हैं दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी समुदाय। सरकार ने गरीब, असहाय और निचले तबके के लोगों को मदद के उद्देश्य से कई तरह के सामाजिक सुरक्षा सेवाएं संचालित कर रखी हैं, जिसमें मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि योजनाएं शामिल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े जिले में रहने वाले विभिन्न आदिवासी समुदाय सरकार द्वारा चलाई गई इन सारी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं से वंचित हैं। अगर मनरेगा योजना की बात की जाए तो सालों भर मनरेगा में काम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऐसी हालात सिर्फ मनरेगा योजना की ही नहीं है, पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली योजना का भी यह स्थिति है। पीडीएस के तहत केरोसिन तेल, चने, धान आदि मिलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर लाभुकों को कई कई महीनों से ना तो चने मिलता है और ना ही केरोसिन तेल। अगर कुछ मिलता है तो वह सिर्फ धान और वह भी हर महीने नहीं। ऐसे में यहाँ के आदिवासी समुदाय भुखमरी के शिकार होते हैं और वे इधर उधर से मांग कर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर कुछ आदिवासी परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए शराब का सहारा लेते हैं और शराब बेचकर जो पैसा आता है उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी देश के दंतेवाड़े जिले जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों की ऐसी हालत वाकई चिंता का विषय है। और वास्तव में सरकार अगर इन क्षेत्रों का विकास करना और देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करना चाहती है तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
दोस्तों, मैं दीपक और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ भारत के प्रवासी श्रमिकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल मतलब कुछ भी नहीं है। 1 फरवरी को घोषित केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018-19 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 3.7 मिलियन घरों के निर्माण की घोषणा की गई है। भारत के शहरी आवास की समस्या को हल करने के लिए यह संख्या बहुत कम नहीं है जो शहरों में सबसे गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए होगी। एक प्रवासी मजदूर गंगाराम ने कहा कि मैंने कभी कारखाना के बाहर अहमदाबाद शहर नहीं देखा है। वह अहमदाबाद के कपड़ों के फैक्ट्री में काम करता है जहां 20 कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर ही रहते हैं। दुकान की मंजिल पर ही वे मशीन के बीच खाली स्थान में सोते हैं, खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं और अपना खाली समय भी वहीं बिताते हैं। इन श्रमिकों के लिए उनके कामकाज और निजी जीवन में कोई फर्क नहीं है। वे न केवल कार्यस्थल के खतरों के संपर्क में हैं, बल्कि उच्च स्तर के शोषण का सामना भी करते हैं। वे अक्सर मौसम की मांग के समय 18 से 20 घंटा काम करते हैं। भारतीय शहरों में लाखों प्रवासी श्रमिकों की ऐसी ही स्थिति है। शहर में अनुमानित 1.3 मिलियन प्रवासी श्रमिक अपनी आबादी का 1/6 हिस्सा बनाते हैं और सस्ते श्रम प्रदान करते हैं। जो अपने विनिर्माण, होटल और निर्माण क्षेत्र के उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर भी उनके लिए आवास एक महत्वाकांक्षी शब्द बनकर रह जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कम से कम 2500 प्रवासी परिवार पूरे शहर में खुले स्थान में रहते हैं, फुटपाथ पर, फ्लाईओवर के पास, रेल पटरियों के पास और खुले मैदान पर। वही न केवल सब्सिडी वाले राशन, पानी, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन जैसी बुनियादी सेवाओं से वंचित होते हैं, बल्कि उनके अल्प संपत्तियों के निष्कासन और जब्ती का खतरा भी लगातार बना रहता है। इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी के लिए आवास एक असंभव सपने और एक खाली वादा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शहरों में PMAI जैसी योजनाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय घर स्थिर और क्षणिक आवास की जरूरतों और मौसमी प्रवासी कामगारों की कल्पनाओं को पूरा नहीं करते हैं। इस बड़े खंड को इन आवास योजना की पहुंच से वंचित किया जाता है, क्योंकि उनके पास शहर में आवश्यक अधिवास दस्तावेज नहीं होते।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आस पास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।